से आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ की स्थिति हुई घातक। भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गंगा अभियान। और लिवरपूल ने पेनाल्टी शूटआउट में चेल्सी को हराकर जीता इंग्लिश लीग कप। और अब खबरें विस्तार से। लिस्मोर के मेयर स्टीव क्रेग ने अपने शहर के लोगों से आग्रह किया है कि वे अगर शहर छोड़कर जा सकते हैं तो अभी ही निकल जाएं। आज रात तक शहर में बाढ़ का पानी 14 मीटर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशंका है। बीती रात विल्सन नदी अपने तटों से उफान मार गई थी। तेजी से बढ़ता बाढ़ का पानी कई उन लोगों को प्रभावित कर चुका है जिनके पास सुरक्षित जगहों पर जाने का विकल्प नहीं था। शहर की मुख्य सड़क ब्रक्सनर हाईवे पूरी तरह से जलमग्न है, साथ ही कई वाहन भी डूब गए हैं। श्री क्रेग ने 2GB रेडियो से कहा कि जिस गति से पानी बढ़ रहा है ये कई लोगों की आशा के विपरीत रहा है।
Most people were prepared, which was really good news, and people in flood affected zones really kicked their flood plans into action early. But intensity and the level of rainfall that we've had in the last 24 hours, even at 6 o'clock last night, they forecast the levee being breached at about midday today. It actually came over at about 3 a.m. this morning, and it's due to be Lismore's biggest flood in history.
मौसम विभाग ने नॉर्दर्न रिवर्स, मध्य उत्तर तट रेखा और नॉर्दर्न टेबल लैंड्स के लिए तीव्र मौसम की चेतावनी जारी की है। विभाग का मानना है कि इन इलाकों में बाढ़ घातक भी साबित हो सकती है। वहीं क्वींसलैंड में आपातकालीन सेवाओं ने बीती रात लगभग 2,200 मदद की गुहारों का जवाब दिया है। क्वींसलैंड और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ की आपातकालीन स्थिति अब भी बनी हुई है। आज सवेरे लगभग 8 बजे ब्रिस्बेन नदी लगभग 4 मीटर तक उफान मार गई थी, जिसके साथ मलबा, नावें और छोटे घर बहते हुए भी देखे गए। राज्य के हजारों घर खाली करा लिए गए हैं और सैकड़ों स्कूल बंद करने पड़े हैं। क्वींसलैंड की प्रीमियर का कहना है कि राज्य में अचानक आने वाली घातक बाढ़ का प्रकोप है और कुछ नदियां, खासकर लोगन और गोल्ड कोस्ट में अब भी उफान पर नहीं आई हैं। अनास्तासिया पलाशे ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे बचाव केंद्रों में शरण ले लें।
Currently, we have 1,544 people in evacuation centres across the southeast, and more are being opened by council. So the councils gave us a brief today. So please, if you are living in an impacted area, and if you cannot remain in your home and you don't have family or close relatives nearby, there are evacuation centres available. So help is there as well.
फेडरल सरकार का कहना है कि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में प्रभावित 17 स्थानीय सरकारी इलाकों में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में करीब 1,000 लोगों को अपने घर खाली कर बचाव कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। सरकार का कहना है कि MyGov वेबसाइट के जरिए हर वयस्क के लिए $1,000 और हर बच्चे के लिए $500 की राहत राशि तुरंत मुहैया कराई जा रही है। दीर्घकाल में अगर लोग बाढ़ के चलते अपने काम पर नहीं जा सकेंगे तो लोगों को 13 हफ्ते की समय अवधि में डिजास्टर रिकवरी अलाउंस भुगतान किया जाएगा। फेडरल आपातकालीन प्रबंधन मंत्री ब्रिजिट मैकेंजी ने नेटवर्क 7 से कहा है कि सरकार प्रभावित लोगों की तुरंत सहायता करने का प्रयास कर रही है।
This very unusual weather system has just really sat over the top of these communities and continued to rain. Even last night we had 200 mil of rain drop. Everyone must stay home. Do not go through floodwaters, even if you think it's safe, because we don't need any more tragedies occurring.
दूसरी तरफ विक्टोरिया में अब PCR जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए $450 की संगरोध राशि अब उपलब्ध नहीं होगी। रैपिड एंटीजन जांच आने के बाद से यह व्यवस्था बेमानी हो गई है। विक्टोरियाई सरकार ने घोषणा की है कि ये एकांतवास भत्ता मंगलवार 1 मार्च से रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब जाँच की मांग में कमी आ गई है और रैपिड एंटीजन जाँच किटें भी सुलभ हैं। जुलाई 2020 से राज्य की दूसरी कोविड लहर शुरू होने के बाद करीब $545 मिलियन की कुल लागत से करीब 1.2 मिलियन भुगतान किए गए हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि वे नाटो में यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरण और चिकित्सीय सहायता के रूप में गैर घातक सहयोग के लिए 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता देगी। आज जारी हुए एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सहायता राशि पर और जानकारी जल्द ही जारी कर ये बताया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेनियाई सैन्य शक्ति के लिए नाटो को कौन कौन से गैर घातक उपकरण पहुंचाएगा। कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने सेवन नेटवर्क से कहा है कि फेडरल सरकार रूसी राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित करने जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है।
And we're working that through and obviously talking to our international counterparts. With respect to the military equipment, we're talking to our partners in the United States and the United Kingdom about the nature of such equipment, where it can be sourced from, how it can be provided, as well as obviously the non-lethal equipment that we are going to help provide the people of Ukraine. This is a very much a global effort.
ऑस्ट्रेलिया के लौह अयस्क यानी आयरन ओर दिग्गज एंड्रयू फॉरेस्ट ने रूस में अपने हरित ऊर्जा के निवेशों को राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन पर हमले की निंदा करते हुए वापस ले लिया है। श्री फॉरेस्ट ने एबीसी से कहा कि पश्चिमी ताकतों को जान का नुकसान करने वाले हथियारों तक पहुंचने वाली सारी आर्थिक स्रोतों को रोक देना चाहिए। उनका कहना है कि इस संकट का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ेगा।
We need to step over the line here and exclude Russia from the SWIFT monetary settlement system. I know that is going to cause inconvenience to many countries, including Australia, but if a nation is prepared to destroy the futures and the freedoms of another nation, then I think the right move is to exclude them from the monetary settlement system, and I implore our government to get this job done.
इसी बीच न्यू साउथ वेल्स ने एक राज्य निवेश फंड में से 75 मिलियन डॉलर की रूसी संपत्ति को निकाल बाहर किया है। कोषाध्यक्ष मैट कीन का कहना है कि श्री पुतिन के यूक्रेन पर गैर कानूनी अतिक्रमण ने वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और यह कि जनतांत्रिक सरकारों को इस समय यूक्रेन के साथ खड़े रहना चाहिए। वहीं यूक्रेन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि सर्गे किस्लित्सिया का कहना है कि कम से कम 16 बच्चे हाल के हमलों में मारे गए हैं। इसमें किंडरगार्टन स्कूल पर हुए हमले में एक बच्चा और क्यू के राष्ट्रीय बाल अस्पताल पर हुए हमले में दूसरे बच्चे भी शामिल हैं। श्री किस्लित्सिया का कहना है कि देश में 3.5 लाख बच्चों के पास अब शिक्षा का कोई जरिया नहीं रहा है।
Today I have brought these appalling facts to the attention of the UNICEF, asking to respond immediately to the situation, give proper qualification to the actions of the Russian Federation, and take all possible measures to stop further deaths and violence against children in Ukraine. Due to the blatant Russian aggression.
अमरीकी अधिकारियों ने रूसी राष्ट्रपति के न्यूक्लियर हथियारों की चेतावनी की निंदा की है। उनका कहना है कि ये तनाव को कई दर्जे बढ़ा देता है और यह कि ये चेतावनी केवल तनाव बढ़ाने का बहाना भर है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर ताकतों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। उनका यह निर्णय नाटो और पश्चिमी ताकतों के प्रतिबंधों के जवाब में आता है। श्री पुतिन ने इन प्रतिबंधों को आक्रामक बताया है। संयुक्त की अमरीकी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलियाई समय से कल सुबह 7 बजे के करीब होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी।
प्रेसिडेंट पुतिन इज कंटिन्यूइंग टू एस्केलेट दिस वॉर इन अ मैनर दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। पुतिन हैज ट्राइड एवरी मींस पॉसिबल टू एक्चुअली पुट फियर in the world in terms of his action, and it just means that we have to ramp up our efforts here at the United Nations and elsewhere to hold him accountable.
और अब खबरें भारत से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से 249 लोगों का एक दल कल देर रात ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं फ्लाइट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। इन सभी लोगों को रोमानिया के बुकारेस्ट एयरपोर्ट से लाया गया था। रूस और यूक्रेन के मध्य तनाव के बीच 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इस अभियान के तहत अब तक एयर इंडिया की 5 फ्लाइट में 1100 से ज्यादा छात्र छात्राओं समेत भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया जा चुका है। हालांकि अभी भी हजारों भारतीयों को घर वापसी का इंतजार है। इससे पहले भी रोमानिया से एयर इंडिया का एक जहाज 219 छात्र छात्राओं को लेकर शनिवार रात मुंबई पहुंचा था, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका स्वागत किया था। वहीं भारत में कोरोना की परिस्थिति में भारत की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 आयु वर्ग के 90% किशोरों को कोरोना रोधी टीका की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी से शुरू हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.33 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। लिवरपूल ने चेल्सी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार लीग कप जीत लिया है। 21 सफल पेनाल्टियों के बाद फाइनल मैच का फैसला हुआ और लिवरपूल विजेता घोषित हुआ। लिवरपूल की इस जीत के साथ ये उनके जर्मन मैनेजर यूर्गेन क्लॉप का पहला घरेलू कप भी था। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में उमस के साथ बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बरसात के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।